ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जारी युद्ध तथा इसके मानवीय पहलुओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में कल 7वीं भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार व्यापक शांति की आवश्यकता है। दोनों नेताओं ने खासकर विकासशील देशों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभाव की चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकी संगठनों के खिलाफ संगठित प्रयास किए जाने की भी अपील की। संयुक्त वक्तव्य में पश्चिम एशिया में शांति तथा स्थिरता पर बल दिया गया और पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी हथियारबंद गुट हमास के आतंकी हमले की एक स्वर से निंदा की गई। दोनों नेताओं ने गजा में जानमाल के नुकसान पर भी चिंता व्यक्त करते हुए तुरंत संघर्ष विराम और मानवीय सहायता जारी रखने पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए आसपास के देशों को जिम्मेदारी समझनी होगी। भारत और इटली साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। नई दिल्ली में कल पहली साइबर वार्ता में दोनों देशों ने बढ़ते साइबर खतरे और राष्ट्रीय साइबर कार्यनीति पर विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण पहल के लिए सूचना तंत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा की। भारत और इटली ने विशेषकर संयुक्त राष्ट्र में साइबर क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर मिलकर काम करने पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज छत्तीसगढ़ के भिलाई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इससे पहले रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। झारखंड विधानसभा में पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 1609 पर्चे भरे गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। उधर महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम जारी है। कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने कल पर्चे भरे। नामांकन पत्र 29 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। राज्य में विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के बीच 18 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाली महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता स्थगित हो गई है। BGB के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान स्थिति के कारण उनके अधिकारी देश भर में तैनात हैं। इसी वजह से उन्होंने BSF से इस बैठक को एक महीने बाद आयोजित किए जाने का अनुरोध किया। भारत और बांग्लादेश के सीमा बल साल में दो बार महानिदेशक स्तर की बैठकें करते हैं। ये 55वीं बैठक थी। आखिरी बैठक इस साल मार्च में ढाका में हुई थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 4.5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के सैनिकों के डेपसांग तथा डेमचोक क्षेत्रों में पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक सीमा पर गश्त फिर से शुरू हो जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने कहा कि इस समझौते से सैनिकों के पीछे हटने और अप्रैल 2020 में उत्पन्न हुए तनाव का समाधान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ आज दोपहर नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान 2024 देंगे। वे इंडियन स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर्स विषय पर अपने विचार रखेंगे। व्याख्यान का आयोजन प्रसार भारती द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में किया जाता है। पुणे में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के में न्यूजीलैंड ने भारत को 359 रन का लक्ष्य दिया है। मैच के तीसरे दिन आज न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 255 रन बनाकर आउट हो गई। पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए थे, जबकि भारतीय टीम पहली पारी में 156 रन बनाकर आउट हुई थी। ताजा समाचार मिलने तक आज भारत ने भोजनावकाश तक एक विकेट पर 81 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।